आइए अब आयतों के साथ साथ चलते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्थ। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। फिर दूसरी बात, वइन तुब्दू मा फी अन्फुसिकुम औ तुख्फूहू युहासिबकुम बिहिल्लाह। तुम अपने दिल की बातों का बरमला इजहार करो या इनको छुपाए रखो, सब कुछ अल्लाह के दायरा इख्तसाब में है, यानी उसको पता चल जाता है कि तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो। तुम जो कहते हो करते हो अल्लाह को पता है, सब उसके पास रिकॉर्ड है। होगा क्या, फयग़फिरु लिमन यशाउ, बस जिसे चाहे माफ कर दे। वयुअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसे चाहे अजाब दे दे। क्या कोई बेलाग बात है, जुल्म है ज्यादती नहीं, क्या अदल है नहीं रहमत है। अदल की बुनियाद पे नहीं, रहमत की बुनियाद पे कह रहा है कि बहुत सारे गलत काम करने वालों को भी माफ कर दूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बहुत सारी नेकियां करने वालों को अजाब दे दूंगा। इसलिए गलती ना खाओ कि अल्लाह ने जो करना है कर देगा, हो जाएगा। ये सब कुछ क्यों है, इसलिए कि वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम डर गए। हमने तो अभी सिर्फ अभी अपने आप को सेट ही किया है, पारे सही कर रहे हैं और पेंसिल देख रहे हैं, कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, तर्जमा ही है, सुन लो जो भी है, तफसीर अभी होगी। लेकिन जब ये आयत उतरी तो सहाबा कराम घबरा गए, क्योंकि इसमें एक तो अल्लाह की मलकियत की बात है और दूसरी मुहासवे की बात है। फिर क्या हुआ था उसको अगली आयत के साथ बताऊंगी, लेकिन आइए जरा एक एक लफ्ज़ पे बात करते हैं। लिल्लाह ही, अल्लाह का है। अल्लाह का होने से क्या मुराद है? नंबर एक, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने पैदा की। दूसरी बात, हर चीज़ उसके सामने जवाबदेह है, हर चीज पर उसका इख्तियार है, हर चीज का मालिक भी वही है और मुदब्बिर भी वही है, यानी बनाने वाला भी है, चलाने वाला भी है। फिर अल्लाह का होने से क्या मुराद है? कि हर चीज उसकी शाहकारी का एक खूबसूरत नमूना है। कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, सब मेरा भी तो बहुत कुछ है। जब भी किसी जगह मलकियत की बात आती है ना, तो इंसान अल्लाह के मालिक होने पर इस सोच के साथ एतराज़ करने लगता है कि अगर अल्लाह की मलकियत को मान लिया तो फिर उसके मुहासिब होने को भी मानना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी बातों पे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या बड़ी बात है, अगर अल्लाह का सब कुछ है तो मेरा भी तो है। तो लिख लीजिए कि मलकियत दो किस्म की होती है। एक है कुल्ली मलकियत, कंप्लीट ओनरशिप, अरबी में कहेंगे तो मलकियत है तामा, कंप्लीट, पूरे का पूरा किसी का होना। ये क्या होती है? नंबर एक, जिसकी ये मलकियत होती है उसका इख्तियार पूरा होता है, वो उसको बदल भी सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है, खुद फायदा उठा ले, किसी और को दे दे, उसकी मर्जी। और उसके अंदर किसी दूसरे का इख्तियार नहीं होता, लिहाजा वो पूरा रखता है। दूसरी मलकियत है मलकियत नाकिसा, नुक्स वाली मलकियत, इनकम्प्लीट ओनरशिप। आप इसको अपनी जुबान में समझ लीजिए, एक है लैंड लॉर्ड, घर वाला, और एक है किराएदार, बस सारी बात इधर पूरी हो जाएगी। हालांकि इसमें भी बहुत फर्क है, लेकिन सिर्फ इसको समझिए, मालिक मकान और किराएदार में क्या फर्क होता है। लिखिए, मालिक मकान के पास किराएदार की निस्बत इख्तियारात ज्यादा होते हैं, चाहे उस घर को रखे, बेच दे, खुद रहे, किसी और को दे दे, पूरा घर किसी को दे दे, आधा दे दे, कुछ में रह ले, कुछ कर ले, एक दीवार यहाँ से निकाले उधर से कर ले, हालांकि आपको पता है कि यहाँ तो अपने अपने घरों के इख्तियार भी पूरे नहीं, एक दीवार नहीं खींच सकते जब तक गवर्नमेंट से 7 किस्म की इजाज़त नहीं लेते, ठीक है, इसको हम आगे जाके तकबल करते हैं। लेकिन बहरहाल मालिक मकान जो होता है वो कहता है ये मेरा घर है, नाम उसके होती है चीज़, उसका नाम लिखा होता है। इसके बरक्स किराएदार क्या होता है, वो यूज़ करता है एग्रीमेंट के साथ, पैसे देता है। फिर आप देखिए कि किराएदार रह तो सकता है, तब्दीली नहीं कर सकता। मसलन कोई कहे कि मैं इस घर में रहूं 6 महीने के लिए, घर दे दे, लेकिन मैं इसकी एक दीवार बीच में से निकाल के इस कमरे को बड़ा करूंगा। ये अलग बात है कि पहले कोई मुआहदा हो जाए, मालिक मकान कहता है कर लें आपकी मर्जी, लेकिन ये पाबंद होता है, ठीक है। क्या किराएदार जिस घर को किराए पे लेता है उसके बाद वो किसी और 4 लोगों को किराए पे दे सकता है? आम हालात में नहीं दे सकता। यानी फर्क है दोनों में कि एक वो कैफियत होती है कि जिसमें कोई किसी चीज को सिर्फ इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरी में उस पे उसका इख्तियार बढ़ता है। यहां बात है लिल्ला ही, अभी सिर्फ लिल्ला पे रहिएगा, आगे ना जाए। अल्लाह का है, अल्लाह सुबहाना ताला का सब कुछ कैसे है, मलकियत तामा, इस दुनिया को रखे, इसको बनाए, इसको बिगाड़े, कहीं जलजला आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं बिजली गिर जाए, पानी के चश्मे फूट जाए, कहीं लोग बिल्कुल प्यासे मरे, पूरे का पूरा इख्तियार है, सब कुछ उसके हाथ में है। जब चाहेगा फ़इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फ़यकून, जब चाहेगा कुन कहेगा, कलम हिल बसर, पलक झपकते में इस दुनिया में क़यामत आ जाएगी। इसके बरक्स हम दुनिया में अल्लाह के मुकाबले में अब अपनी ओनरशिप को लेके रखें। पहले तो आपको मिसाल दी है ना मालिक मकान और किराएदार की, अब लीजिए असल हकीकत, लिखिए जरा, मैं भी मालिक, अल्लाह भी मालिक। किस किस चीज़ की मैं मालिक हूँ? मसलन मैं अपनी आंखों की मालिक हूँ, कान मेरे हैं, हाथ मेरे हैं, घर मेरा, बच्चे मेरे, शौहर मेरा, पैसे मेरे, गाड़ी मेरी, बैंक बैलेंस मेरे नाम पे, सोना चांदी हीरे डायमंड सब मेरे, इट्स माइन। जब कहते हैं ना मेरा माइन मेरा, यकूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल, वल्लाही। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का तो उस माल में बस इतना है, खा लिया थोड़ा मजा आया, टेस्ट बना, जिस्म को ताकत मिली, कुछ घंटे बाद जिस्म से गंदगी बन के निकल गया, पहन लिया जिस्म ढांपा, अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, उसके बाद चीथड़े बन गया। और तीसरा उसका वो जो अपने हाथ से आगे भेज दिया, बस बाकी तो सब वरासा का है, वारिसों का है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम में कोई ऐसा है कि जिसको दूसरे का माल अपने माल से ज्यादा प्यारा लगे? है कोई हम में से? यानी दूसरे की गाड़ी देख के अपनी गाड़ी से ज्यादा खुश हो? हम तो आहें भरेंगे जबकि अपने पास गाड़ी हो ना या टूटी भी हो, हमेशा अपनी चीज की खुशी होती है, सच्ची बात है। आप घर लेते हैं तो आपको खुशी होती है, दूसरे से ठीक है रस्मन आपको खुशी हो जाए, लेकिन दूसरे की चीज का क्या मान? बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि दुनिया में हमें जो मलकियतें मिली हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल के लिए हैं। क्या मैं और आप अपनी आंखों का रंग बदल सकते हैं? लेंजेस लगा लें थोड़ी देर के लिए, खुश हो लें और बात है, असल तो नहीं बदलेगी। क्या हम अपना कद बड़ा कर सकते हैं? अपना कद, अपना जिस्म पतला दुबला कर सकते हैं? कुछ हद तक कर सकते हैं, मुकम्मल इख्तियार नहीं है, लेकिन अल्लाह का इख्तियार है। अगर ये जिस्म मेरा अपना होता तो बताइए, पहले सबसे बताइए, जिंदगी में दांत क्यों झड़ जाते, बाल क्यों मेरे सफेद हो जाते, ये चेहरे पे झुर्रियां क्यों आ जाती वक्त के साथ? ले, ले, मेरा भाई, रखे अपने चेहरे को फ्रेश, खाएं अच्छी खुराक, फिगर अपना अच्छा रखे, कब तक? बीमारियां क्यों आती हैं अगर ये जिस्म मेरा होता? और अगर ये जिस्म मेरा होता तो मुझे मौत क्यों आती? मेरा तो नहीं है, अल्लाह चाहता है कि तुम उसके बन जाओ, इसलिए कहा कि लिल्लाही, सब कुछ उसका है। क्या माफिस समावाति व माफिल अर्थ, जो कुछ आसमानों और जमीन के बीच में है। क्या कुछ है जमीन और आसमान के बीच में? अगर मैं आपसे पूछूं तो एक लंबी लिस्ट है ना, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, फल, फूल, हजर, शजर, नजर, जो मर्जी कहते जाइए, ये सब अल्लाह का है, मानते हैं ना? लेकिन एक चीज को हम भूल जाते हैं, जहां से इस लिस्ट का आगाज होना चाहिए, जी, मैं, इन्नी लिल्ला। जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं हम? इन्ना लिल्ला। वो जमा का सीगा होता है ना, तो उसमें सब खप जाता है कि बस सब में आ गया। सबसे पहले जिसको आपने अल्लाह का समझना है ना, वो आप हैं, मैं अल्लाह की हूँ। इन्नी वज्जहत वजही लिल्लज़ी फ़तरनी। हज़रत इब्राहिम की अल्लाह ताला ऐसी तारीफें नहीं करता, उसकी वजह क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर दिया। मती, फरमा बरदार। जब तक बंदा खुद को रब का ना समझे, बात नहीं बनती। और आज हमारा हाल क्या है कि हम सबके बनते, नफ्स के बनते, मुआशरे के बनते, खानदान के बनते, दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों के बनते, लेकिन अल्लाह का बनते हुए डर लगता है। जिंदगी किसके लिए गुजारते हैं? लोगों के लिए, अपने लिए? वो जीना भी क्या जीना है जो अपने लिए जिए? अल्लाह के लिए जिएंगे तो अल्लाह के साथ मोहब्बत होगी। जब एक बंदे को इस बात का एहसास होता है ना कि मेरा रब बहुत बड़ा है, तो फिर हकीकत में वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है। आज के कुछ एक्सपीरियंस, मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे कुछ हालात में डालकर मेरी तैयारी करवाते हैं। आयतें भी इतनी खूबसूरत हैं, मुझे अंदाज़ा था क्योंकि फ़्लाइट का टाइम ऐसा था कि जब वापस आऊँगी तो सीधा मुझे पता था कि स्कूल ही आना होगा। किताबें वगैरह सब मेरे पास थी, लेकिन सफ़र में कुछ इस तरह के हालात होते हैं और कभी बंदे के पास भी चीज़ होती है तो इंसान नहीं खोल सकता। लेकिन आज मैंने बहुत तैयारी की आपके इस सबक की। कैसे? नेचर पे, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज। ये देखिए स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स हैं, अगर आप देखना चाहें आप देखिए कि ये जहाज था हमारा। मैं वहां भी कह रही थी जब मैं खींच रही थी ये तस्वीरें कि काश कोई इसको अपनी असल आंख से देखे, यकीन करें, फिर बंदे को पता चलता है कि असल में बंदे का क्या। ये देखिए एक जो चीज़, आज हमारी फ्लाइट जो थी ना वो बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, फजर पढ़ के जहाज में समझे बैठने वाली कैफियत थी। जब जहाज में बैठे गुप अंधेरा था, उसके बाद जहाज ऊपर चलना गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी बाहर नजर पड़ी ना, यकीन करें कि करीब था कि मेरी चीखें निकल जाए। क्या मैंने देखा? ये तस्वीर एक आपको दिखाती हूँ, अल्लाह करे कि अब आपको थोड़ी सी उधर, मुझे पता नहीं कि वहां भी कितना कुछ दिख रहा है, सिर्फ मेरे लफ्जों को महसूस करें। इस तस्वीर पर रुक के जरा थोड़ी सी बात करते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये तस्वीर उस मंजर का एक अशरे अशीर का उसका सोमा हिस्सा भी नहीं है। ये देखिए ये आसमान के किनारे पर्पल कलर के थे पूरा मेरे सामने, जब मैंने विंडो से देखा ना तो पूरा बॉर्डर मोव के शीट्स, डार्क लाइट लाइट, ये किनारे हैं। ऊपर चूंकि रात थी ना, नॉर्वे में आपको पता है कि सुबह शाम बदलती है ना, तो जो ग्रे के शेड्स जो है ना वो जब सूरज पड़ता है ना तो पर्पल बन जाते हैं। ये ऊपर जो था ना, यहाँ से जो ऊपर हिस्सा है ये आसमान था जाहिर है, और ये नीचे वाला हिस्सा ना ये सूरज उग रहा है, बिल्कुल पीच, खूबसूरत कलर जो होता है ना, फ्रेश कलर, सूरज निकलना चाह रहा है। तो मुझे ऐसे दिख रहा था कि कोई मेरे सामने एक बिल्कुल फैंटेसी है और चारों तरफ किसी ने पर्पल के यूँ डार्क डार्क लाइट ऐसे करते हुए शेड ब्लेंड हुए, क्योंकि ऊपर से रात जा रही थी ना, ब्लैक कलर के अंदर जब ऑरेंज मिलता है ना तो पर्पल बन जाता है, और वो जब बन रहा था ना तो ये बिल्कुल, ये आपको देखिए ये पूरी पट्टी थी चारों तरफ जहाँ भी मैं देख रही थी, और ये नीचे जो बादल होते हैं ना, जो आपको पता है कि जहाज तो ऊंचा होता है ना, तो नीचे जो बादल थे उसके नीचे से सूरज उग रहा था ना, तो ये ऑरेंज था। फिर उस वक्त मुझे लगा कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। हम कैसे उसकी कदर करें? ये देखिए एक और क्लोजअप है, थोड़ा सा ये पर्पल है, ये उसके लाइट, यहाँ से जी। और ये नीचे आपको पता क्या दिख रहा है? बदलियाँ। ये पानी की ऐसे थी जैसे कभी आपने लस्सी में मक्खन बनाया, असली लस्सी घर में जो होती है ना, तो उसके ऊपर मक्खन की ना वो ऐसे फुटकियाँ फुटकियाँ आ जाती हैं, ये बादल थे। अनबिलीवेबल, जिसको आप कहें कि मैं वहां बैठ के खुद को चुटकियां काट रही थी कि क्या ये हकीकत है। वल्ला ही मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बच्चों की वो नहीं होती फैंटेसीज मूवी वीडियोस होती हैं, बड़ा एक परियों वाला माहौल बनाया हुआ है, बिल्कुल वो आंखों के सामने था। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, जब दिन खुल गया तो फिर ये तस्वीर थी। अब ये देखिए वही रात दिन, वही जहाज है, वही सब कुछ है, लेकिन अब लग रहा है आपको पिंक कलर किधर गया, पर्पल किधर गया? अच्छा, जहाज भी इतना ज्यादा बादलों के करीब था, मोस्टली बादल तो हमेशा ही हम लोग देखते हैं, लेकिन ये जहाज मुझे लगता है बहुत ऊंचा नहीं जा रहा था, या बादल बहुत ऊंचे थे। बिल्कुल मैं ऐसे देख रही थी ना, तो नीचे बादल ऐसे थे जैसे रुई के गोले नहीं होते ऐसे। क्या आपको मैं बताऊं कि जैसे कई लोगों के आजकल सर्दियों में स्वेटर और कोट जो होते हैं ना, फर फर होते हैं, और उसमें यूं डिजाइन बने। अब ये तो आप देख ही नहीं पा रहे ना कुछ भी क्या है, लेकिन ये ना इस तरह की फर, बिल्कुल वाइट प्योर फर जो होती है ना, कौन उस रब की बातें करे जिसके कब्जे में इतना कुछ है। ये देखिए ये भी एक मंजर है। लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध, उसका है सब कुछ। अब ये सारी चीजें देखें, ये एक दो तस्वीरें मैंने पहले की बनाई हुई थी, ट्रेन से एक दिन हम कहीं आ रहे थे, तो ये देखिए ये आपको यहाँ तो इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन ये बीच में जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये शीप्स हैं, और सब पहाड़ी पे। आज भी मैंने जब लंदन उतर रहा था जहाज, तो बिल्कुल नीचे सब्जा था, आपको पता कि लंदन ही गैटविक था हमारा, तो वो जरा ओपन में आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। ग्रीन कलर की बेल्ट्स, और आजकल ऊपर से देखें तो दरख्त पीले और ब्राउन अभी दिखते हैं, यानी अनबिलीवेबल मंजर। और बीच में एक जगह मैंने देखा तो शीप्स भी घूम फिर रही थी।
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
हम सिर्फ अल्लाह के बारे में ना अहकामात की नजर से देखते हैं, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। हमने कभी अल्लाह ताला को उस नजर से नहीं देखा। अब ये तस्वीर बंदे को क्या कहती है? बिल्कुल एक ऐसी तस्वीर, मेरे पास कहीं और भी होगी पहले से, नॉर्वे में हम जब जाते हैं ओस्लो में, तो तकरीबन 3 घंटे लगा लें, एक जगह जिसको एंड ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं लोग। फर्स्ट टाइम जब हम नॉर्वे आए तो वहां हम गए, साथियों ने लेके गए, बस समझे इस किस्म का मैं देख रहा था। बारिश भी हो रही थी, पत्ते भी पीले थे उसमें, और ऐसे लग रहा था कि बस इसके आगे दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि दुनिया खत्म कोई नहीं होती उसके आगे, ये सिर्फ एक हमारा ख्याल होता है कि ये होगा और वो होगा। फिर इसी तरह कुछ और चीजें देखिए कि अल्लाह का क्या कुछ है। ये देखिए लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध, सब कुछ उस मालिक है। कभी आप इस परिंदे को मेरी स्क्रीन से आके देखें ना, तो ऐसे मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं पकड़ लूं, जैसे आजकल वो फर के ग्लव्स और जूते, और ये ना, ये इतना सॉफ्ट परिंदा है। ये देखिए इसकी काली कलगी, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध। लेकिन बहरहाल आपको सिर्फ गौर व फिक्र करना सिखा रही हूँ, बाहर जाया करें तो देखा करें, फूल पत्ते सितारे फल क्या क्या है आपके लिए। ये मछलियों को देखें, समंदर के अंदर क्या कुछ है। अब बताइए कि जिसका इतना कुछ है, क्या आप उसके बनना चाहते हैं? दुनिया में जिसके 4 पैसे आ जाए ना, तो दूर से लोग रिश्तेदारी गांड के आ जाते हैं, बस वो करीब का ये, बस वो बहन के भाई के फुलां का, बस चचा का बेटा है। अल्लाह से क्यों रिश्ते तोड़ते हैं हम? उसने तो जोड़ा हुआ अंदर रूह का रिश्ता है, लेकिन हम बाज दफा उसके अंदर जाके परेशान हो जाते हैं। वइन तुब्दू मा फी अन्फुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिही अल्लाह, और अगर तुम जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है, या तुम छुपाओ, अल्लाह उसका हिसाब लेगा तुमसे, उसको सब पता है। یہ تھی وہ آیت جس کے اوپر صحابہ کرام گھبرا گئے. اللہ کے نبی یہ کیا دل کی باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی, گھبرا گئے. کیا ہوا اللہ کے نبی, ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم عمل کرتے ہیں, لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو, جو چھپاتے ہو, اس کے اوپر بھی تمہیں پوچھوں گا. اتنا گھبرائے کہ آپ کہہ لیجئے کہ جس کو ہماری زبان میں کہیں گے کہ راتوں کی نیند اڑ گئی, حتیٰ کہ پھر اس کے اوپر اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے اس کے بعد اس کا حصہ اترا کہ غم نہ کرو, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نہیں کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ سماتا. پھر ان کو چین آیا تھوڑا سا. جن کو محاسبے کا غم ہوتا ہے نا, وہ ایسے نہیں رہتے. اتنا ڈرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق, رویا کرتے تھے, کہتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا اور توڑ کے پھینک دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی چڑیا کو کھدکتا اڑتا دیکھتی تو کہتی, اے عائشہ کاش تو چڑیا ہوتی, وکنتی نسیم منسیا, اور مرتی اور مر کے مٹی بن جاتی اور کل تیرا حساب نہ ہوتا. اتنا لوگ حساب سے ڈرتے تھے. آج ہم اپنی ذات پہ لگاتے ہوئے ذرا نہیں سوچ پاتے کہ حساب کتنا ہے. عذاب تو دور کی بات ہے, حساب کتنا ہے؟ اللہ کہتا حساب تو ہوگا, تم دو چھپا لو. کس کو کیا نہیں پتا, نہ مجھے ضرورت ہے آپ سے پوچھنے کی, نہ آپ کو میرا حال ہے کوئی دلچسپی ہے کہ میرے پاس کیا ہے اور کتنا ہے. بظاہر ہم مسکین بنے پھرتے ہیں, ہمارے پاس بہت ہوتا ہے, اور بظاہر ہم بہت ماشاءاللہ پہنے اڑے لگتے ہیں, اپنا ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ کہتا مجھے پتا ہے کل ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. بِاللہ صحابہ گھبرائے, ڈرے, ہائے کیا کرے, حساب ہوگا. کہا فکر نہ کرو, حساب بہت چیز ہے. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ, پھر جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. یہ ہے وہ نقطہ جو میں آج سمجھ کے اور آپ سمجھ کے جائیں. ہماری جو بلانگنگز ہیں نا اس دنیا میں, کپڑے, کھانا, گھر, جوتے, زیور, سب, ان سب کا حساب ہونا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو ہے, دنیا میں بھی ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد یغفرو اور یعذبو, یہ اللہ کی مرضی ہے. کسی کی 10 گاڑیاں نہ پوچھے, کیونکہ حلال سے ضرورت کی تھی, گھر میں 10 لوگ ہیں, 10 کام ہیں, کوئی حرج نہیں, نو پرابلم. کسی کی فراری تھی, لینڈ کروزر تھی, نو پرابلم, اللہ ول ناٹ آسک ہم, جاؤ جاؤ مجھے پتہ, ٹھیک ہے تمہاری ضرورت تھی, جاؤ شاباش, کوئی بات نہیں, اچھے کام کرتے تھے, کوئی بات, جاؤ. لیکن وہ یو ایس بو میں یہ شاہ, کسی کی ایک فراری پکڑی ہوئی ہے کہ بتاؤ یہ آئے کہاں سے تھے, تمہارے باپ کا مال تھا, یہ کس کو تم نے سود اور تجارت کو برابر کر کے کہہ دیا تھا, ذرا نام تو دو, ذرا بتاؤ. بس سیل لیگل چیز پکڑی جائے گی, قیامت کے دن یہ عذاب ہے. اور جو لیگل ہوں گی جائیے پنجاب پھر اگوائڈ, بالکل میرے ذہن میں وہی ہے جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نکل کے آئی ہوں. گرین چینل ہوتا ہے نا, ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, نتھنگ ٹو ڈکلیئر, گزر جاؤ. کتنی شان سے بندہ گزر جاتا ہے, ایک کھڑا ہوتا ہے, نظر رکھتا ہے, ڈر اس کا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں روک نہ لے, لیکن آپ کو فکر کوئی نہیں ہے کہ دیکھنا ہے, دیکھ لو جو بھی اندر گزر جاتے ہیں. تو گرین چینل سے گزر جائیں گے وہ لوگ جن کے لیے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ, اللہ جس کو بخش دے گا, جاؤ, ڈونٹ وری. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ ہمارے پاس بہت کپڑے ہیں اس کا حساب ہوگا, ہمارے پاس بہت زیور ہے اس کا حساب ہوگا, ڈونٹ وری ایٹ آل. فکر اس کی کریں کہ جب نمبر ایک حرام سے کہ حلال سے, اپنا کہ دوسرے کا مال کھایا ہوا ہے, لیا کیسے تھا, نمبر ایک اس پہ فکر کیجئے کہ جو میرے پاس ہے حلال کا کہ نہیں, زکات دیتی ہوں کہ نہیں, کنز تو نہیں, گنجا سانپ بن کے تو نہیں ڈسے گا. اور دوسرا جرم, بس یہ دوسرا جرم سمجھ جائیں گے نا تو بات واضح ہے, آیا کہاں سے اور جاتا کہاں ہے. جانے سے سمجھ نہیں آئی بات, اتنی مشکل باتیں آپ کرتی ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, تو آئیے تھوڑا سا سمجھا دوں کہ بندے کے پاس جتنا بھی ہو حلال سے ہے, جائز ہے, ڈونٹ وری, نو پرابلم, بٹ اللہ کو ضرورت ہو, اور اللہ کو کبھی ضرورت نہیں ہوتی ہماری, یعنی اللہ کے بندوں کو, اللہ کے دین کو ضرورت ہو, پھر بندہ چھپا کے رکھ دے, یہ بچوں کے لیے, یہ بڑوں کے لیے. اس پہ یحاسبکم اللہ, کتنوں کو پوائنٹ سمجھ آ گیا, کچھ کو نہیں آیا. میں پھر بتاتی ہوں, آپ کے پاس 1 لاکھ کروڑ ہے, 2 لاکھ 4 10 20, کیا کرائیٹیرین ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ ہم کیا بنائیں کیا نہ بنائیں, کتنا مہنگا جوڑا بنائیں کتنا مہنگا نہیں, زیور بنائیں نہ بنائیں, ہے نا یہ کوشچن عورتوں کا, اور میرا تو ہے یہ کہ بھائی میں اپنی ذات پہ کتنا لگاؤں, کیا کروں, اور کہاں تقوی کی حد ہے اور کہاں آگے جاتی ہے. تو سمجھ لیجئے اللہ نے اس کا کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا. ہر بندے کے حالات فرق ہیں. ایک بندہ اس کی 2000 تنخواہ ہے ٹوٹل, چلے پاؤنڈس میں کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں, مجھے نہیں پتہ زیادہ ہوتے ہیں کہ کم, مثال لے لیں بس سمجھنے کے لیے. اب وہ اس کی بیوی 200 پاؤنڈ کا جوڑا بناتی ہے, 2000 تنخواہ ہے, اس میں سے بیوی 200 پاؤنڈ کا جوڑا بنا لیتی ہے, لکھ لیں 200 پاؤنڈ کا ہو گیا. ایک دوسرا بندہ جس کی تنخواہ 500 پاؤنڈ ہے, اس کی بیوی 100 پاؤنڈ کا جوڑا بناتی ہے, ظاہر کس کا مہنگا ہے؟ پہلے والے کا 200 کا ہے, اس کا 100 کا ہے, لیکن پکڑ اس کی ہوگی کہ اس نے 2000 میں سے 200 کا بنایا 10%, تم نے 500 میں سے 100 کا بنا دیا, تم نے تو اسے ڈبل کر دیا. ہر بندے کا اصل اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, پہلی بات ہے کتنے میں سے کتنا ہے. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس نے کتنا دیا یا کون کتنا دیتا ہے, یہ نہیں پتا پیچھے کیا ہے. جس چیز نے مجھے رلایا ہے وہ یہ تھا کہ مجھے پتا اس کے پیچھے کچھ نہیں, اور اس کو خوشی ہو رہی ہوگی, میں جذباتی ہو رہی ہوں, سمجھ رہے ہیں نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کیا دیا, اللہ پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے کیا رکھا ہوا ہے, ابھی پیچھے کیا چھوڑا ہوا ہے. جیسے ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے, جب سارے گھر کا سامان لے آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت. کبھی آج تک آپ نے یہ سنا کہ ابو بکر نے کیا دیا تھا, کتنے ٹرک تھے سامان کے اور کتنا فرنیچر اور کیا برانڈڈ؟ آج تک نہیں آتا, کبھی کتابوں میں تذکرہ بھی نہیں آتا کہ ابو بکر نے تبوک کے موقع پہ جو سارے گھر کا دے دیا تھا وہ کیا دیا تھا, لیکن ایک جملہ ضرور آتا ہے کہ سارا دے دیا تھا, پیچھے کوئی نہیں. اور یقین کریں جو ابو بکر نے اس دور میں دیا بھی ہوگا نا, وہ میرے اور آپ کے کلوزٹ کے سامان سے زیادہ نہیں ہوگا. ان کے اپنے باپ کہتے ہیں جو نابینا تھے, کہتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں ابو بکر کو چھڑیاں مار مار کے نا دیواروں پہ, تو دیکھ رہے کہ کہیں اوپر جو نہیں جھریاں ہوتی اس میں تو نہیں کوئی چیز رہ گئی, وہ بھی دے ہوں. اللہ یہ نہیں کہتا کیا دیا ہے, کتنے میں سے دیا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے ہیں. تو لہٰذا بالکل فکر نہ کریں, حلال پہ کھائیں پئیں. ایمان والے کا کیا ہے, اللہ سے لیتا ہے, تادی سے نعمت ہے, مانگتا کوئی نہیں, اللہ دے دیتا ہے اس کو خود ہی. وہ کہتا ہے میں کھاتا ہوں پیتا ہوں رکھتا ہوں, آج ضرورت پڑ گئی اللہ کے رستے میں کسی غریب کو پڑ گئی ہے, پکڑ کے دے دو پھر کل مجھے بھی مل جائے گا. اور اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ معیار اپنی ذات پہ کچھ رکھے اور اللہ کے لیے کچھ اور رکھے تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. اصل یہ بات ہے, آپ اپنا بھی جوڑا بنائیں اور بہو کا بھی بنائیں, اور اپنا تو ماشاء اللہ آپ کا وہ برانڈڈ, تو بہو کا آپ اندر سے نکال کے کہیں یہ سلا لو جوڑا عید پہ, تو اس کو سمجھ آ جائے گی نا کہ کس دل سے دیا. بس یہ فرق ہے, آپ پورے دل سے اللہ سے کہا کرے اللہ. مثال ہے, اب یہ چوڑی ہے ایک, کوئی بھی لے لے ایک چوڑی, اب گولڈ کی بناتے ہیں تو کتنے کی ہے, چلے 500 پاؤنڈ کی ایک چوڑی, 500 پاؤنڈ کی میں نے ایک چوڑی بنائی گولڈ کی, اسراف, توبہ توبہ. آپ کہتے ہیں چھوڑو, وہ دیکھو بازار جاؤں گی مال میں آرٹیفیشل اتنی خوبصورت جیولری مل رہی ہے, 500 کی نہیں 100 پاؤنڈ کی لے کے آ جاتی ہوں. اب آپ سوچئے کہ بازار کیا ہوا, آپ نے 500 پاؤنڈ کی جوڑی پہنی, آپ جا کے 100 کی لیں, لوگ کہیں گے دیکھا میں فضول خرچ آپ سستے, لیکن اصل میں کیا کیا آپ نے, اس 100 کی جوڑی کو لے کے جائیے بھائی بیچنے واپس, کچھ بھی نہیں, لے آئیں تو ختم, نو ری سیل. آپ سونے کی چوڑی بنا کے کہتے ہیں چلو پہن لی ہے نا, جس دن ضرورت پڑے گی یہ چوڑی تو کام آئے گی, یہ تو کسی کو دیں گے تو کوئی کچھ ڈھال لے گا, کچی چوڑی کو کس نے کرنا ہے. یہ ایک معیار ہے. ایمان والا خرچ بھی کرتا ہے نا تو جگہ دیکھ کے کرتا ہے, بلکہ وہ خرچ کرتا ہے نا تو وہاں سے اس کو مل رہا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں ایسے رکھا ہوا, چلو روپے رکھے ہوئے اس کا کیا کرنا ہے, میں نے سونا تو بڑھنا ہی ہے, میں سونے کی صورت میں رکھ لیتا ہوں, رکھنا کیوں پھر پہن لیتا ہوں. ہم میں اور آپ کبھی کسی کو نہیں پرکھ سکتے, کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کپڑوں میں جسموں میں زیور ہوتا ہے, دل میں کوئی نہیں ہوتا, پرواہ ہی نہیں, اور کچھ پہنتے کوئی نہیں, سیند سیند کے رکھتے ہیں, پہنتے صرف اس خوف سے نہیں کہ چور نہ لے جائیں, لیکن دل میں ہوتا ہے. تو دولت اور سونے کی جگہ دل نہیں ہے, पहने, हाथ पांव पहने। अब फिर कहें अच्छा फिर कल से यहाँ पहन आते हैं चूड़ियाँ पहने, फिर यहाँ से फिर नमाज शुरू कर दें, अब आए पहने उसके ऊपर लंबी लंबी मालाएं पहने। सोच देखे ना, देखिए आप फर्क समझे। मैंने चूड़ियां पहनी हुई हैं, अब मैं बार बार इसको खोलूं ऊपर करूं ताकि आप देख लें। भाई आप सारे देख भी लेंगे मेरी चूड़ियां तो मेरी बला से मुझे क्या मिलेगा। जब आप अपने आप को अल्लाह की निगाहों से देखते हैं ना तो फर्क होता है। अपने चाव पूरे किया करें, अपने शौक पूरे करें। अच्छा लगता है मुझे, अपने मियाँ को दिखाएं, अपने बच्चों के लिए पहने। मैं एक ऐसी बेटी को जानती हूँ कि जब उसके अम्मी अब्बू अब्बू खास तौर पे आने हो तो वो सबसे अच्छा जोड़ा पहनती, कहती अब्बू के लिए पहनने, अब्बू बहुत खुश होते हैं। और कभी मैं अच्छे कपड़े ना पहनता अब्बू कहते हैं तू की पाया था, और आलिम है उनके अब्बू, वो खुश होते हैं देख के बेटियों को अच्छे कपड़े पहने हुए। हमारा हाल क्या है कि मियाँ बेचारे के तो नसीब में पता नहीं है कि नहीं, अच्छे कपड़े पहने मियाँ के लिए, ये हक इनको कब मिल गया था है? तो बहरहाल ये सारी बातें, बुरा ना मानिएगा अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैंने किसी को नहीं सुनाया, मैं तो बात ये कर रही हूँ कि हिसाब और अजाब फ़र्क है। आज मैंने कोशिश की है हिसाब और अजाब का फ़र्क कर दूँ। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन क़दीर, इसमें धमकी है, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तुम मत कादिर बनो, अपनी चीज़ों पे खुद कुदरत ना रखो। आपने कई दफ़ा देखा होगा आपकी चीज़ आपके द्रॉज में पड़ी होती है आपको नहीं मिलती, जाने का पहनने के लिए ढूंढ रहे नहीं मिल रही, ढूंढ रहे मिल रहे, कब से लेके रखा हुआ था, पहनेंगे पहनेंगे नहीं पहन सकते। जो ही फंक्शन से वापस आते हैं वही ड्रेस खोलते हैं तो ज़रा सी इधर उधर की तो सामने पड़ी है, क्योंकि वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर। जाओ पहन के दिखाओ फिर आज। वला यनफ़ुज़ुल जद्दी मिन कल जद, कोई दौलत वाले को उसकी दौलत फ़ायदा नहीं दे सकती अल्लाह के हुक्म के सिवा। तो ये दुनिया की नेमतें भी हमें तब फ़ायदा देती हैं जब अल्लाह चाहता है।
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير